ओम शांति। मधुबन के इस पावन वरदानी तपोभूमि पर एक बार फिर से आप सबका आज के सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपने अभिनंदन में एक बार जोरदार ताली आप सब बजाएंगे। जैसा कि आपने अपने प्रोग्राम स्केड्यूल में देखा कि अभी का बहुत सुंदर सत्र है ब्रेकिंग द बैरियर्स। बहुत सारे बैरियर्स हमारे जीवन में हैं, कुछ एक्सटर्नल बैरियर्स और कुछ इंटरनल बैरियर्स, एंड इंटरनल बैरियर्स आर मच मोर पावरफुल देन द एक्सटर्नल बैरियर्स। बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि कहते हैं कि महान लक्ष्य रखने वाले लोग कभी ये नहीं सोचते कि हमें कितनी दूर जाना है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि हमें वहां तक कैसे पहुंचना है। तो ऐसी ही महान विभूति, उपलब्धियों से संपन्न, परमात्मा के दिल को जीतने वाली, बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्तित्व आज के मंच की शोभा, आदरणीय राजयोगिनी सुमन दीदी जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार हम जोरदार करतल ध्वनि से आपका स्वागत करती हूँ। मैं संक्षिप्त में आपका परिचय देना चाहूंगी। आपका जन्म कर्नाटक के एक धार्मिक परिवार में हुआ और बचपन से ही आध्यात्मिकता के प्रति गहन रुचि ने आपको इतना प्रभावित किया कि आपने निर्णय ले लिया दैट यू विल डेडिकेट योर लाइफ टू ब्रह्मा कुमारीज। आज से करीबन 32 वर्ष पहले 1992 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में पूर्ण रीति से समर्पित कर दिया। आपने अपनी लौकिक पढ़ाई बैंगलोर यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में की और आप जिस विंग के कार्यक्रम में आए हैं, सैट विंग, शिपिंग एविएशन एंड टूरिज्म विंग, आप उसकी हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। साथ साथ वर्तमान समय आप जिस एकेडमी में बैठे हैं, ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड, आप फैकल्टी मेंबर के रूप में अपनी सेवाएं यहां पर देते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की तरफ से यूथ रैलीज, एनवायरमेंटल रैलीज, कार रैलीज जो है ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो उसमें भी आपका सक्रिय योगदान रहता है। साथ साथ आप एक सकुशल राजयोग प्रशिक्षिका हैं और राजयोग प्रशिक्षिका के साथ साथ आप मैनेजमेंट ट्रेनर भी हैं। आप बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्रीज में, कॉरपोरेट सेक्टर में बहुत सारे विषयों पर अपने सकुशल प्रवचन देती हैं, जैसे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्लीप मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट सिखाकर आप सभी के जीवन को मैनेज करना सिखाती हैं। साथ ही न केवल देश में बल्कि विदेश में भी आपने अपनी सेवाएं दी हैं और अनेक आत्माओं को लाभान्वित प्रेरित किया है। यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, मॉरिशियस, केन्या, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर आप गए और अपने प्रवचनों के माध्यम से आत्माओं को लाभान्वित और प्रेरित किया। और आप हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ भाषा पर आपका पूरा अधिकार है। तीनों ही भाषाओं में आप बहुत ही सरलता और स्पष्टता से अपने प्रवचन देती हैं। और जैसा कि आपका नाम है, आपने अपने नाम को पूरी रीति से सार्थक किया है। सुमन दीदी, आप दिव्यता की खुशबू, गुणों की खुशबू सभी के जीवन में फैलाती हैं, सभी के जीवन को महकाती हैं। तो अभी मैं अनुरोध करूंगी, हमारा आज का विषय है ब्रेकिंग द बैरियर्स, आप उसको स्पष्ट करें, उस पर प्रकाश डालें।
ओम शांति। कल से बहुत कुछ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और यहां आए ही हैं कुछ परिवर्तन की प्रेरणा लेके जाने के लिए, राइट? जब जिंदगी की बात चलता है तो जिंदगी किसको कहा जाता है? जिंदगी एक जन्म और मरण के बीच का जो समय है उसको जिंदगी कहा जाता है। लेकिन जिंदगी के कई सारे परिभाषाएं हुई है। कोई कहते हैं लाइफ इज अ स्ट्रगल, कोई कहते हैं लाइफ इज अ गेम प्लेड, कोई कहते हैं लाइफ इज अ ड्रामा एक्टेड, कोई कहते हैं जिंदगी एक खेल है, खेलो। बहुत सारी परिभाषा है जिंदगी के, लेकिन जब हम बचपन में होते हैं उस समय हमारे जिंदगी की परिभाषा अलग होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो फिर समय प्रति समय उसकी परिभाषाएं भी बदलती जाती हैं। जब कॉलेज से निकलते हैं बहुत उमंग उत्साह से कहते हैं, आई वॉन्ट टू कॉन्कर द वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू रीच द स्काइज, इतना कुछ करना है जिंदगी में, बहुत कुछ कमाना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन धीरे 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 क्या हो जाता है, धीरे 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 कहीं ना कहीं वो जो मोटिवेशन था, कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन, वो उमंग उत्साह कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है, क्यों कम होता जाता है? हाँ, चैलेंजेस बहुत आते हैं, क्योंकि जब कॉलेज से निकलते हैं तो एक्सपीरियंस तो नहीं होता, बहुत सारे उमंगे, बहुत सारी बहुत एम्बिशंस लेकर के निकलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम जाते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में जब हम जाते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आने लगते हैं, फिर वास्तविकता पता चलने लगता है, फिर धीरे 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 एक चैलेंज में फेल हो गए, दूसरे चैलेंज में फेल हो गए, तीसरे चैलेंज में फेल हो गए, फिर जिंदगी बहुत मुश्किल लगने लगता है, बहुत भारी लगने लगता है, जीना ही पड़ेगा, जैसे भारीपन आ जाता है। तो फिर जब भारीपन आता है फिर हम रिफ्लेक्ट करने लगते हैं अंदर कि क्या है ऐसी चीज जो हमें अपने आप में बदलने की जरूरत है, जो इन चैलेंजेस को हम फेस करें, जिसके आधार से, है ना? क्योंकि संसार में जब हम रह रहे हैं चैलेंजेस से तो हम बच नहीं सकते, और कलयुगी दुनिया है, हम ये नहीं कह सकते यहां रहने से मेरे प्रॉब्लम्स कम होंगे, वहां रहने से प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे। नहीं, जहां भी रहेंगे प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही, चैलेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाने की जरूरत है। और सक्षम बनाने के लिए कुछ बातों के बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सुंदर एक क्लिप है, आप देखिए।
बड़ी अजीब सी है जिंदगी, जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, जो सोचा कभी मिला नहीं, और जो मिला रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, पर जो पाया संभाला जाता नहीं। क्यों अजीब सी पहेली है जिंदगी, इसे कोई सुलझा पाता नहीं। जीवन में कभी समझौता करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, पहला जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। चेहरे की हंसी से हर गम चुराओ, बहुत कुछ बोलो पर कुछ ना छिपाओ, खुद ना रूठो कभी सबको मनाओ, राज है ये जिंदगी बस जीते चले जाओ, बस जीते चले। बड़ी अजीब सी है जिंदगी, जो चाहा कभी पाया नहीं, जो पाया
ऐसी है जिंदगी। हाँ, जो है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, जो नहीं है वो हम हासिल करना चाहते हैं, और ये भी है कि हासिल होने करने के बाद फिर तो उससे भी हम संतुष्ट नहीं है, तो एक प्रकार से डिससैटिस्फैक्शन हमेशा बना रहता है। तो इस जिंदगी में हर हाल में खुश रहने के लिए हमें सक्षम होना पड़ेगा, एम्पावर्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अगर फिजिकली इम्यून सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, तो कहीं भी धूल मिट्टी पोल्यूशन कहीं भी जाए वो अफेक्ट नहीं करता। अगर कहीं भी इम्यून सिस्टम हमारा कम है या फिर कुछ कमजोर है तो फिर वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो इसीलिए अंदर से हमें वो सक्षम बनना है। दैट इज व्हाई इट इज सेड, इट इज नॉट बिकॉज थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट दैट वी डोंट डेयर, बट इट इज बिकॉज वी डू नॉट डेयर दैट दे आर डिफिकल्ट। कहीं ना कहीं हमें हिम्मत रखना पड़ता है, तब जाकर के हम डिफिकल्ट चीज को, इम्पॉसिबल चीज को हम पॉसिबल कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ बैरियर्स हमारे जीवन में जो आते हैं उनको हम ब्रेक कैसे करें? बहुत सारे बैरियर्स हैं, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग बैरियर्स हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में अलग अलग बैरियर्स आते हैं। तो उन बैरियर्स को हम कैसे ब्रेक करें, कैसे हम अपने आप को फ्री करें? सबसे पहली बात है, आई जस्ट गो टू द 10 पॉइंट्स, जो हमारे बैरियर्स है उसको हम ब्रेक कैसे करें। सबसे और बहुत ही जो ये बैरियर हम चाहते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, ये कंफर्ट जोन। हम यहां ठीक है, वहां वो, इस जॉब में हम ठीक है, उस जॉब में जाने से अच्छा नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन कहीं ना कहीं, या इन लोगों के साथ हम ठीक है, उन लोगों के साथ मिलना जुलना हमें पसंद नहीं आता क्योंकि आई वेर मच मोर कंफर्टेबल। तो कहीं ना कहीं हम अपने इर्द गिर्द एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं जिसको ब्रेक करके हम बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड, लाइफ इज लाइक अ जर्नी, शिप जर्नी। अगर शिप किस लिए बना हुआ है? शिप किस लिए बना हुआ है? टू सेल। सागर में जाना ही उसका काम है। अगर हार्बर पर रहेगा उस शिप का क्या महत्व? इतने करोड़ों रुपया खर्च करके इतना बड़ा शिप बनाया जाता है और वो हार्बर पर ही रहे तो उसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन अगर वो शिप कहे कि वो जो सेल करने से सागर में बहुत बड़े बड़े लहर आते हैं, बड़े बड़े शार्क्स है, बहुत बड़े बड़े वेल्स है, वो ठंडी ठंडी हवाओं को मुझे झेलना पड़ता है, मुझे वहां नहीं जाना है, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन द हार्बर, लेट मी स्टे इन द हार्बर, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, अगर वो शिप गए, ठीक है थोड़े दूर पर जाऊंगा, कोई एंकर लगा करके, एंकर के साथ कनेक्टेड है और चेन के साथ वहां इर्द गिर्द घूम रहा है, अंदर नहीं जाना है, वहां ही राउंड राउंड चक्कर चक्कर लगाना है, ठीक है यहाँ कंफर्टेबल है, तो भी हम उस शिप के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, है ना? कहीं ना कहीं हम भी ऐसे हैं। हमारे एंकर्स बहुत सारे हैं जिनके साथ हम जमीन के साथ बहुत ही डीपली कनेक्टेड है, डीपली नेल्ड है, जिसको हम उठाना नहीं चाहते। क्यों नहीं उठाना चाहते हैं? क्योंकि शिप अंदर जाने से, सागर में जाने से इतने बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी बातों को जो हम फेस करना, हमको फेस करना पड़ता है, वो फेस करने के लिए कहीं ना कहीं डरते हैं, कहीं ना कहीं डरते हैं। तो इसलिए वी हैव टू लेट गो ऑफ दोज कंफर्ट जोन्स। तो खुद को आप देखिए कि खुद के कौन से कंफर्ट जोन्स हैं जिसको, जिससे बाहर आने के लिए हम बहुत ही डरते हैं, बहुत ही बेचैन हो जाते हैं, नहीं इस कंफर्ट जोन से हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? ट्वेंटी ईयर्स फ्रॉम नाउ यू विल बी मोर डिसअपॉइंटेड बाय द थिंग्स दैट यू डिंट डू दैन बाय द वंस यू डिड डू। जो आप इस उम्र में, इस जीवन के मोड़ पर पीछे मोड़ करके अगर देखते हैं, 20 साल पहले अगर मैंने इस डिसीजन ले लिया होता तो अच्छा था, इसके बजाय ये ले लिया तो बहुत गलत डिसीजन ले लिया, अफसोस होता है। अफसोस, थोड़ा हिम्मत करके मैं अपने डिसीजन में थोड़ा परिवर्तन लाता तो मेरी जिंदगी बहुत बदला हुआ होता अभी तक, है ना। तो इसीलिए हमेशा फ्यूचर में जाकर के रिपेंट करते हैं फॉर द थिंग्स दैट वी डिडंट डू रादर देन फॉर द थिंग्स दैट वी डिड डू। तो इसीलिए रिपेंट ना करे, इसीलिए हिम्मत करके वो कंफर्ट जोन से हमें बाहर आने की जरूरत है। सो थ्रो ऑफ द बोलाइंस, सेल अवे फ्रॉम द सेफ हार्बर, कैच द ट्रेड विंड्स इन योर सेल, एक्सप्लोर, ड्रीम एंड डिस्कवर, है ना। तो ये सबसे पहली बात है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है।
Once, a child who sold newspapers in a small town had an ambition. Once, there was a college dropout who had an ambition to own the world. Once, there was a man who lay on his deathbed fighting cancer, slowly losing everything but his ambition. Once, a salesman roamed the streets of Mumbai, hawking cloth on his bicycle. He too had an ambition.
So this is right. जिनका भी हमने देखा अभी वीडियो में, वो बड़े बड़े लोग इतने सक्सेसफुल रहे अपने जिंदगी में, अपने क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, अपने कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं से ब्रेक करके बाहर आए। सबसे बड़ा जो कंफर्ट जोन है जिससे हम बाहर आना पसंद नहीं करते हैं वो है लोक लाज। लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, मैं बस स्ट्रीट पे पेपर भेजूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे को देखेंगे तो क्या कमेंट होगा। तो हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे नेबर्स क्या कहेंगे। तो ये लोक लाज के जो बैरियर है उसको ब्रेक करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और नेक्स्ट बैरियर है, सबसे इम्पॉर्टेंट बैरियर, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। हमेशा हम कहते हैं ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके कारण से, ये टाइम पे नहीं आया ना तो इसलिए ये काम पूरा नहीं हो पाया, मैं एग्जाम पे पास क्यों नहीं हो पाया क्योंकि मैं बीमार थी, मैं उस चीज को क्यों नहीं कर पाया क्योंकि बारिश आ गई। मतलब हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूजेस ढूंढते रहते हैं, और एक्सक्यूजेस ढूंढने से नुकसान किसको है, नुकसान किसको है, खुद को नुकसान है। ऐसे कई महान विभूतियों को हमने देखा है या सुना है, जिनके जीवन कहानी के द्वारा हमने सुना है कि भले बहुत गरीब घर के थे लेकिन स्ट्रीट के लैंप के नीचे बैठ करके पढ़ करके वो बहुत बड़े इंजीनियर्स बने, आईएएस ऑफिसर्स बने, बहुत बड़े अच्छे अच्छे पोजीशन पे वो गए। अगर उस टाइम पे अगर वो एक्सक्यूज देते कि हमारे घर में लाइट नहीं था तो इसलिए पढ़ाई नहीं की, तो आज इतने बड़े पोजीशन में नहीं होते। तो इसीलिए वी विल हैव टू स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो कर्म करना ही है या उस चीज को हासिल करके ही रहना है। लेकिन उसके बीच में कुछ स्ट्रगल भी होता है। जैसे आप चित्र देख रहे हैं बटरफ्लाई का, बटरफ्लाई बटरफ्लाई बनने से पहले क्या होता है, कोकून के अंदर कैटरपिलर बनता है, राइट? कैटरपिलर बहुत ही, कैटरपिलर से जब बटरफ्लाई बनता है ना, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। वो एक व्यक्ति कोकून से निकल करके, वो कैटरपिलर जब निकल रहा था, कैटरपिलर बटरफ्लाई बन रहा था, उसको देख रहा था एक व्यक्ति। तो वो कैटरपिलर ने क्या किया, कोकून बहुत छोटा सा छेद किया और छोटे से छेद करके वो कैटरपिलर उससे निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत पेनफुल था उसके लिए। उस पर रहम खा करके उसने क्या कर लिया, छेद को बढ़ा दिया, बेचारा कैटरपिलर बहुत जल्दी निकल जाए। लेकिन जब कैटरपिलर बाहर निकला ना, तो कैसे दिख रहा था, हाँ, उसकी बॉडी जो है वो इतना मोटा मोटा और उसके विंग्स बहुत छोटे छोटे, जिस कारण से वो बटरफ्लाई उड़ नहीं पा रहा था। तो ये पेनफुल प्रोसेस के थ्रू जाना बहुत जरूरी था कैटरपिलर के लिए बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनने के लिए। अगर रहम खा करके उसको उस पेनफुल प्रोसेस से फ्री करते हैं, तो कैटरपिलर कभी भी बटरफ्लाई नहीं बन सकता। तो इसलिए जब भी हम चैलेंजेस फेस करते हैं, समस्याएं फेस करते हैं, सबसे पहले दोष हम किसको देते हैं, किसको देते हैं, अपने को नहीं देते हैं, भगवान को खोजने लगते हैं। भगवान ये क्यों दे दिया मुझे, ये क्यों दुख दिया, वो क्यों दिया, तो भगवान को खोजना शुरू करते हैं। लेकिन भगवान भी क्या करते, साक्षी होकर के देखता है, ये मेरा बच्चा जो है ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनना है, तो वो पेनफुल प्रोसेस से गुजरना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसलिए कभी भी चैलेंजेस आए ना, कभी भी प्रॉब्लम्स आए, समस्या आए, तो क्या सोचना है हम सभी को, क्या सोचना है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ बटरफ्लाई, इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ बटरफ्लाई। तो ये सोच करके उस परिस्थिति से हमें आगे बढ़ना है। तो इसलिए कहते हैं, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है ना वो लाइट, ओके। जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, राइट? तो इस एक व्यक्ति ने भी हर समय कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन दिया क्या भगवान ने उसको, आई आस्क्ड फॉर स्ट्रेंथ एंड गॉड गेव मी डिफिकल्टीज टू मेक मी स्ट्रांग। स्ट्रांग कैसे बनेंगे, डिफिकल्टीज आएंगे तो स्ट्रांग बनेंगे। आई आस्क्ड फॉर विजडम एंड गॉड गेव मी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। आई आस्क्ड फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड गॉड गेव मी ब्रेन एंड ब्रॉन टू वर्क। तरक्की करना है तो मुझे दिमाग चाहिए, राइट? आई आस्क्ड फॉर करेज एंड गॉड गेव मी डेंजर टू ओवरकम। तो डेंजर को ओवरकम करेंगे तभी तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी। आई आस्क्ड फॉर लव एंड गॉड गेव मी ट्रबल्ड पीपल टू हेल्प। I asked for favors and God gave me opportunities. I received nothing I wanted, but I received everything I needed. भगवान भी देखता है कि कितना सहन कर सकते, कितने हद तक जा सकते हैं। तो जैसे काइट को कभी कभी पकड़ना भी पड़ता है, थोड़ा सा टाइट भी करना पड़ता है, कभी ढीला भी करना पड़ता है, तो उसको पता है मुझे उनको क्या देना है। तो उस अनुसार उसको एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई हम जरूर बन सकते हैं। एंड द थर्ड मेन थिंग इज ब्लेमिंग द पीपल। पीछे जो हम कर रहे थे एक्सक्यूजेस, सिचुएशंस, परिस्थितियां, इसके बारे में एक्सक्यूजेस देते थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, लेकिन ब्लेम सीधा लोगों के ऊपर आता है। इसके कारण से मेरा नुकसान हुआ, इसके कारण से मेरे मैं तरक्की नहीं कर पाई। तो सीधा लोगों के ऊपर हम ब्लेम करते हैं। कभी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने भुजाओं पर लेना पसंद नहीं करते। लेकिन अमेरिका में 1936 के पहले एक व्यक्ति था जेसी ओवेंस। वो ब्लैक था और 1936 में आप सोच सकते हैं अपार्टाइड सिस्टम इतना स्ट्रांग था अमेरिका में। लेकिन जेसी ओवेंस ही बिकेम द गोल्ड मेडलिस्ट फॉर 100, 200 एंड 400 रिले रेस आल्सो एंड लॉन्ग जंप आल्सो। तो इसलिए ओलंपिक स्पीच जब उसने दिया 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में, जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जब उसने जीता, तो उसके स्पीच बहुत हार्ट टचिंग था। वो स्पीच इस तरीके से था, तो दोज ऑफ यू हु लाफ्ड एट मी, थैंक यू, विदाउट यू आई वुडंट हैव क्राइड। टू दोज ऑफ यू हु जस्ट कुडंट लव मी, थैंक यू, विदाउट यू आई वुडंट हैव नोन रियल लव। टू दोज ऑफ यू हु हर्ट माई फीलिंग्स, थैंक यू, विदाउट यू आई वुडंट हैव फेल्ट देम। टू दोज ऑफ यू हु लेफ्ट मी लोनली, thank you, without you I wouldn't have discovered myself. But it is to those of you who thought I couldn't do it, ye to black hai kya kar lega, to ye socha logo ne, to isliye uske liye kehta hai, it is you I thank the most, because without you I wouldn't have tried, hai na। To agar us samay ye soch karke wo chhod deta ki main to black hu, is समाज परिसर में, सोसाइटी में मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ सकूंगा, ये सोच करके हार मान लेता, तो कभी भी अपने एम्बिशन को अचीव नहीं कर पाता। और जेसी ओवेंस बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, जिसके 10 भाई बहने थे, फिर भी वो अपने हिम्मत से एक्स्ट्रा काम करके, इधर उधर स्ट्रीट पर सब कुछ काम काज करके, पैसा कमा करके अपने एम्बिशन को उसने अचीव किया। तो इसीलिए अगर हम अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, स्टॉप द ब्लेम गेम, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। और जब भी कुछ ब्लेम आता है दूसरों से, टेक इट एज अ चैलेंज, जस्ट लाइक जेसी ओवेंस टुक इट। आप नहीं होगा कह रहे हो ना, ठीक है मैं करके दिखाऊंगा, टेक इट एज अ चैलेंज एंड डू इट, तो जरूर हम हासिल कर सकते हैं, जरूर हम आगे बढ़ सकते हैं। और चौथी बात है वेरी इंपॉर्टेंट, आज सुबह हमने सेशन सुने द पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला, कैसे हम अपने जीवन में धारण करें। तो उसके लिए वी विल हैव टू लेट गो ऑफ अवर पास्ट बर्डन्स, सबसे पहली बात है। और दूसरी बात, लेट गो ऑफ द वरीज ऑफ द फ्यूचर, क्योंकि पास्ट के बर्डन्स के साथ जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्रेजेंट में नहीं जी पाते हैं। बैरियर, ये बहुत बड़ा बैरियर है पास्ट के मेमोरीज। और हर व्यक्ति को दो शक्तियां उपलब्ध है, सभी को भगवान ने दो शक्तियां दी हैं। कौन कौन सी शक्ति? पावर टू रिमेम्बर एंड पावर टू फॉरगेट, हर एक के पास है। लेकिन हम क्या करते हैं, जिन चीजों को याद करना रखना चाहिए उसको हम भूल जाते हैं, जिनको हमें भूलना है उसको हम हमेशा याद रखते हैं। पास्ट के स्वीट मेमोरीज को हम भूल जाते हैं, पास्ट के पेनफुल मेमोरीज को हम हमेशा याद रखते हैं। अगर कहीं हम बस स्टॉप पे जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, तो हर रोज उसी बस स्टॉप पे जाना है, तो कुछ लोग फ्रेंड्स हो जाते हैं उसी टाइम पे जो जाते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो कुछ लोग फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो आपस में बात करते स्माइल करते चलते हैं। लेकिन फिर 30th डे किसने स्माइल नहीं कर लिया, नहीं किया, या थोड़े से हल्के से झगड़ा कर लिया मेरे से, तो वो 29 डेज ऑफ स्माइल याद रहेगा या 30th डे ऑफ क्वारल याद रहेगा? हाँ, थर्टियथ डे जो हल्के से झगड़ा किया या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, तो एक साल दो साल के बाद भी वो याद रहेगा, वो याद रहेगा, लेकिन 29 डेज जो स्वीट मेमोरीज गुजरे या कुछ अच्छे दिन गुजरे उसको कभी भी हम याद नहीं रखते हैं। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, तो ये जो पास्ट का जो हैवी बैरियर है ना उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, उसको हमें निकालना पड़ेगा। पास्ट के हैवीनेस, पास्ट के बर्डन्स को निकालना है तो करें क्या, क्योंकि किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम चल रहे हैं, जब चल रहे हैं तो पीछे वाला पैर उठा करके हम आगे रखते हैं, लेकिन पीछे वाला पैर अगर कहीं अटका हुआ है तो कितना भी जोर लगाएं हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसको फ्री करना बहुत जरूरी है। तो इस ऐसे ही पास्ट के जो ये है, तो बुद्धि वहां जटकी हुई जैम हुआ है, तो उसको हमें निकालने की जरूरत है। तो निकालेंगे कैसे, पास्ट से निकालेंगे कैसे, हाउ टू फॉरगेट द पास्ट। इतना इजी है, डस्टर में लेकर के यहां से डस्ट कर लो या फिर मिटा लो, मिट गया। पास्ट की मेमोरीज को मिटाना इजी है, प्रेजेंट में रहना चाहते हैं, कौन रहना नहीं चाहते, लेकिन बार बार बुद्धि पास्ट में जा रहा है तो करे क्या, वहां से फ्री करना पड़ेगा ना। तो फ्री करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर के हम फ्री होंगे। गुड विशेस, जैसे किसी ने कहा, फॉरगिव ओनली देन कैन यू फॉरगेट। अगर भूलना चाहते हैं, स्टार्ट फॉरगिविंग द पीपल, जिन्होंने भी हमें दुख दिया है, जिन्होंने भी हमें तकलीफ दी है, जिन्होंने भी हमें तंग किया है, उन सभी को माफ करना सीखे। ट्राई टू फॉरगिव। फॉरगिव करने से, माफ करने से उस पर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं आप, किस पर मेहरबानी कर रहे हैं, खुद पर मेहरबानी कर रहे हैं, ताकि खुद के बर्डन लाइट हो रहे हैं। ये मेहरबानी खुद पर करना जरूरी है ताकि हम लाइट हो जाए और पास्ट की मेमोरीज हमारे से निकल जाए। मतलब जो बहुत डिफिकल्ट मेमोरीज है, बहुत सोरोफुल मेमोरीज है, वो हम भूल जाए। हाँ जी, इट्स नॉट इजी। हाँ, आपको माफ कर लिया जाओ, ऐसे कहने से हो जाएगा माफी। कहना तो इजी है लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन करे कैसे। अगर महान बनना है तो करना पड़ेगा। महान व्यक्ति ही माफ कर सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर हम एलिवेटेड बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, या महान बनना छोड़ दीजिए, लेकिन खुद पर रहम करना चाहते हैं, तो फिर हमें माफ करना सीखना होगा। तो माफी कैसे दे, माफ कैसे करें लोगों को, हाउ डू वी फॉरगिव पीपल। जैसे अपने प्रिय लोगों को, द पीपल हुम वी लव द मोस्ट, उनको बहुत सारी दुआएं देते हैं, अब फूलो फलो, आगे बढ़ो, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाए, दिल से भरपूर हम ब्लेसिंग्स देते हैं उनको, गुड विशेस देते हैं। क्या ऐसे ही ब्लेसिंग्स हम जिन लोगों ने हमें दुख दिया है, ऐसे ब्लेसिंग्स दे सकते हैं उनको, दे सकते हैं, हाँ या ना? इट इज डिफिकल्ट बट इट इज डिफिकल्ट। करना सीख जाए। पहले करना करते समय थोड़ा सा अजीब लगता है, नहीं इसने तो इतना दुख दिया, मैं क्यों उसको ब्लेसिंग्स दूं, उसे कर्म का रिटर्न मिल ही जाएगा, देखना एक दिन वो दुखी होके मरेगा। कुछ भी हम भले नहीं करें उसके लिए, वो उसने दुख दिया, भले हमने दुख नहीं दिया, लेकिन बद्दुआएं तो दे रहे हैं, बद्दू देखना इतना दुख दे रहे हैं मेरे को, तो वो एक दिन दुखी होके मरेगा। बद्दुआएं निकलती है, बद्दुआएं निकलने से और भारीपन आ जाता है। और कर्म की गुजगति है, नथिंग हैपन्स इन माई लाइफ विदाउट एनी रीजन्स। अगर उसने दुख दिया है मुझे, इसका मतलब है पास्ट जन्मों में कहीं ना कहीं मैंने जरूर उस व्यक्ति को दुख दिया होगा। तब जाकर के वो रेसिप्रोकेट होकर के मेरे पास आया हुआ है। ये पॉइंट बहुत पक्का रखना है मन में कि वो क्यों दुख दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस व्यक्ति को दुख दिया है, और बार बार वो दुख दे रहा है इसका मतलब मैं भी दुख देती जाऊं तो क्या होगा। उसने एक गाली दी, मैंने दो गाली दी, उसने चार गाली दी, मैं आठ गाली दी, ऐसे रेसिप्रोकेट होता जाए तो क्या होगा, मेरे कर्म का जो बर्डन है ना वो इतना भरता जाएगा। इसलिए फिर बाद में ज्यादा चुक तो करना पड़ेगा, हमारा जो डेपो ये है, क्रेडिट है, वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो वहां ही पावरफुल ब्रेक से ब्रेक लगा दे, भले वो गाली दे रहा है लेकिन ब्रेक लगा करके मैं दो गाली तो ना निकालू, वहां स्टॉप करके मैं अपने आप को परिवर्तन करके फिर उसको गुड विशेस देना शुरू करूं, फिर धीरे 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 वो जो नेगेटिव साइकिल है हम दोनों के बीच में, नेगेटिव कर्मों का हिसाब किताब है, वो धीरे 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 पॉजिटिव बनता जाएगा। इट विल टेक टाइम, वो 10 दिन 15 दिन या 1 साल में ये सब कुछ ठीक हो जाए तो ऐसा नहीं। लगातार जब हम गुड विशेस रखते हैं तो ये साइकिल नेगेटिव साइकिल से पॉजिटिव साइकिल में परिवर्तन जरूर होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी इज मच 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 मोर पावरफुल देन नेगेटिविटी। सकारात्मकता जो है बहुत शक्तिशाली है नकारात्मकता से, इसलिए उसमें विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो इस रीति से हम पास्ट के बर्डन से हम अपने आप को फ्री कर सकते हैं, तब जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात है फ्यूचर की चिंता, फ्यूचर की वरीज, उसके बर्डन बहुत ज्यादा है, बैरियर्स बहुत ज्यादा है यहाँ, क्योंकि आज यहाँ जो भी बैठे हैं हर एक को कल की चिंता है, कल की चिंता है, हा? कल क्या होगा, मेरे बच्चे अभी छोटी है तो वो बड़ी हो जाने के बाद क्या होगा, मेरा रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मेरा बेटा अभी कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो ग्रेजुएट होगा कि नहीं होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, ये होगा वो होगा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या हो जाए, ये हो जाए हो जाए, मतलब बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चिंताएं। क्या चिंता करने से प्रॉब्लम्स कम होंगे, प्रॉब्लम्स कम होंगे, नहीं, चिंता चिता समान है, जितना ज्यादा चिंता करते हैं वो इतना हम भारी होते जाते हैं। तो इसलिए चिंता को छोड़कर स्व चिंतन और प्रभु चिंतन करने की जरूरत है। हाँ, प्लानिंग जरूर करना है, हाँ मेरा रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या करना है, प्लानिंग कर लिया, हाँ इसके एजुकेशन के लिए क्या करना है, उसके लिए जो फंड्स रखना है, ये जो भी प्लानिंग्स हम करते हैं लाइफ में वो सब कुछ प्लानिंग करना है, लेकिन वो प्लानिंग चिंता में परिवर्तन ना हो जाए। हाँ, वो प्लानिंग चिंता में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, वो प्लानिंग चिंता में कैसे परिवर्तन हो जाएगा, हाँ बार बार वही सोचने से, बार 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 वही सोचने से वो चिंता में परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए बार बार उसकी चिंता ना करें, ठीक है, प्लानिंग किया ठीक है, फिर समय जब आएगा वो होगा, प्लानिंग किया, प्लानिंग करके रख दिया बस। तो और दूसरी बात है भगवान में विश्वास रखना जरूरी है। यहाँ भगवान में विश्वास न रखे तो अपने कर्मों पर हम विश्वास रख रहे तो भगवान में क्यों विश्वास रखे, नहीं, भविष्य के भय सबको है, चिंता क्यों है, क्योंकि अनसर्टेनिटी का भय है, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा अनिश्चितता है उसका भय है, तो उसके भय से हमें मुक्त होना है। तो ये सोचे कि वो मेरे ऊपर वाला जो है वो बैठा हुआ है मेरे देखभाल करने के लिए, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। बच्चे माँ के गोद में बहुत निश्चिंत हो जाते हैं, ठीक है मम्मी है ना, पापा है ना घर में, तो वो देखभाल कर रहे हैं। तो पेरेंट्स के साथ रहने से बच्चों की जो चिंता है वो दूर हो जाती है, और हमारे इस आत्मा की मम्मी पापा कौन है, इस आत्मा की जो मम्मी पापा है वो ऊपर वाला है, तो उसके ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। लेकिन विश्वास में कहीं ना कहीं क्या इतना ऊंचा भगवान क्या मुझे मदद करेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मैं ठहरा बहुत साधारण, बहुत ये, तो ये इतना ऊंचा भगवान मुझे मदद करेगा, ये डाउट को हमें निकालना पड़ेगा। डाउट जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमें मदद नहीं मिलेगी। इस पर एक एक्टिविटी हम करेंगे। मैं चाहती हूँ 5 कपल्स आए, मतलब उसमें हस्बैंड वाइफ 3 कपल्स आए और जो फ्रेंड्स हैं 2-2 आए, मतलब 4 आए, तो 10 लोग चाहिए, 2-2 पार्टनरशिप में, 5 पार्टनर्स। हस्बैंड वाइफ है कोई यहाँ? हस्बैंड वाइफ आ जाए, शूज निकाल करके स्टेज पर आ जाइए, शूज निकाल करके ऊपर आ जाइए। अच्छा, वो बांधने के लिए। शूज निकाल करके ऊपर आ जाइए। आपके साथ कौन है पैर? आ जाइए, साथ साथ रहिए, साथ साथ खड़े रहिए। ओके, और आपके साथ पैर, आपके साथ पैर कर लेते हैं, आपके साथ आ जाइए। ओके, और आपके साथ पैर ये हैं, आपके साथ, आप दोनों आपके साथ। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया, सॉरी। अभी आपको क्या करना है, अभी आपके पार्टनर्स में से एक पार्टनर को आंख बांधेंगे। ओके, आप चूज कर लीजिए किसको आंख बांधना है, अब ब्लाइंड फोल्ड करेंगे और दूसरे पार्टनर को फिर हम बताएंगे क्या करना है। ओके, तो आप में से किसको हेल्प कर लीजिए, आ जाइए। आप में से किसको आंख बांधना है? ऐसे बांधिए जो दिखाई ना दे, इसलिए तैयार करके रखा है। हाँ, दिखाई ना दे, ये रख करके बीच में, बीच में वो छोटा सा टॉवल रख करके बांधिए, ये बांधने में मदद कर लीजिए, बांधने में मदद कर लीजिए। हाँ, बांधने में मदद कर लीजिए। वो छोटा सा छोटा वाला है ना, वो दिखाई दे रहा है? हाँ सर, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई, आप हाथ पकड़ लीजिए इनका। हाँ ओके, हाँ आपको दिखाई दे रहा है?
नो।
ओके, आप अपने पार्टनर के हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है? ओके, ओके, सभी ने अपने अपने पार्टनर्स के हाथ पकड़े हुए हैं। सफोकेशन ना हो जाए, ब्रीथ कर पा रहे हैं ना? ओके ओके ओके, अब हाथ पकड़ लीजिए इनकी, हाथ पकड़ लीजिए इनकी। ओके, यू आर सेफ। ओके, जिनके आंख बंद हुए हैं, ये सोचिए यू आर इन द सेफ हैंड्स। ओके, आपके पार्टनर पर पूरा विश्वास रखना है। अभी पार्टनर को क्या करना है, नीचे उतार करके, आप दो लोग यहां से उतरिए, उतर करके यहां से ला करके ऊपर ले आइए। हाँ, धीरे धीरे से यहां से उतरिए, आप उतर करके यहां से घूम फिर करके ऊपर ले आइए। वो गीत है ना,
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम,
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम,
आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम,
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम,
आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम,
जीवन तुम।
वेरी गुड, आपका नाम क्या है?
संभालोगे तुम।
मैं एमपी सिंह।
निकालिए, अभी निकाल सकते हैं। ओके, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, बताइए।
Hey, I had faith on in her that she will not let me fall.
Okay.
That's all.
आपका क्या एक्सपीरियंस था?
इनिशियली आई वॉज स्केर्ड वेन यू सेड दैट यू हैव टू गेट ऑफ आई मीन वॉक एंड देन गेट ऑफ द स्टेप्स बट एज आई वेंट विथ हर देन आई यू नो आई थॉट दैट आई शुड हैव अ फेथ विथ हर टू ऑन हर सो दैट यू नो आई विल बी यू नो आई एम इन अ सेफ हैंड्स एज यू सेड सो आई वॉज देन लेटर ऑन आई वॉज ओके
ओके वेरी गुड आपका क्या अनुभव
इनिशियली थोड़ा कंफ्यूज रखा क्या होने वाला है आंख बंद हो गई तो पता नहीं क्या होने वाला है लेकिन जब मूव करने लगे और उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था तो बिलीव था कि मुझे लेके जाएंगे जहां भी लेके जाएंगे बीच में लग रहा था कहीं छोड़ देंगे उसके बाद क्वेश्चन हो गया कि वहां छोड़ दिया तो फिर किधर जाना है पता नहीं लेकिन अगेन उन्होंने स्पेस काउंट किया तो लगा यस ये सेफ मोड में लेके जा रहे हैं
ठीक तरह से
हाँ सेफ लगा पूरा
वेरी गुड वेरी गुड
जीवन साथी से ये आया समझ में कि वो छोड़ेगा नहीं साथ और वो मंजिल पर मंजिल पर पहुंचा देगा वो
Since the start, I was very confident because he is very caring and I was in safe hands, so there was no problem at all.
Very good. Give them a big hand, please. Please.
Thank you.
आप सभी को कैसा लगा?
If this is faith, अविश्वास, trust किसको कहा जाता है? क्योंकि कहीं बार ब्लाइंड फेथ हो जाता है ब्लाइंड फेथ क्यों क्योंकि समझ नहीं है मेरा पार्टनर क्या है या किस पर हम विश्वास कर रहे हैं उसके बारे में पूरा पता न होने के कारण से ठीक है किसने बोला है तो विश्वास कर रखना है लेकिन वो ब्लाइंड फेथ लंबा समय तक नहीं चल सकता है इसीलिए समझ करके फिर हम विश्वास जब हम रखते हैं तब जा करके हम लंबे समय तक उसके हाथ हमें रह सकते हैं इसलिए भगवान को कंपेनियन बनाने की बात में भगवान तो हाथ पकड़े हुए हैं लेकिन बीच बीच में हम ही छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं हमको विश्वास नहीं आता कहीं ये छोड़ देते हैं या फिर ये होता है कि आजकल के समय में इसलिए एक बहुत अच्छे शायर ने ये कहा आज के दौर में ईमान की बात करते हैं आज के दौर में ईमान की बात करते हैं दुआ कबूल ना होने पर भगवान को भी बदल डालते हैं दुआ कबूल ना होने पर भगवान को भी बदल डालते हैं ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली हनुमान जी की प्रार्थना कर रहे हैं उनसे हमारी जो प्रार्थना है वो कबूल नहीं हो रहा है या फुलफिल नहीं हो रहा है तो बदल डाल के श्री राम जी के पास गए उनसे नहीं हो रहा है तो किसी के पास गए उनसे नहीं हो रहा है चौथे पास तो मना भगवान को बदल डालते हैं तो ऐसे दौर में हम ये कह रहे हैं कि भगवान पर भी विश्वास रखना चाहिए और लोगों पर भी विश्वास रखना चाहिए जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं तब जाकर के हम निश्चिंत हो सकते हैं फ्यूचर की बात को लेकर के एंड द नेक्स्ट बैरियर इज बिकम टफ वी हैव टू बिकम टफ अगर चुई मुई होते टच मी नॉट हो जाएंगे थोड़ा बहुत समस्या आई हम रोकर बैठ गए या थोड़ा बहुत ये हुआ तो फिर हम डिप्रेशन में चले गए ये आज के दौर में नहीं चलेगा वी विल हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड वी हैव टू बी टफ फ्रॉम इनसाइड इसी बात को क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ एक ये था धोबी था उसके पास डोंकी थी और अचानक वो उसका फार्म था एक खेत था तो उसमें एक वेल भी था एक ये था तो अच्छा चलते चलते वो डोंकी बहुत ओल्ड हो चुका था बहुत बूढ़ा हो चुका था तो वो चलते चलते उस वेल के अंदर गिर गया वो सूखा हुआ था वेल पानी नहीं था उसमें तो उसने सोचा कि अभी क्या करो, इस गधे को मैं बचाऊं? ना बैल की जरूरत है ना गधे की जरूरत है, क्योंकि दोनों काम की नहीं है, अभी करूं क्या? तो उसे बचाने से कोई फायदा नहीं है। उसने क्या करना शुरू कर दिया, ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दी। मिट्टी डाल, वो फिर डोंकी को बहुत आश्चर्य लगा, मेरे जो मालिक है इतना प्यार करता था मेरे से, लेकिन आज मेरे को मारने के लिए तुला हुआ है, तो अभी करूं क्या? तो उसने क्या सोचा, ठीक है वो उसका एक्सेप्ट कर लेता तो फिर वो मिट्टी में दब जाता और मर जाता, लेकिन उस सिचुएशन को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। उसने क्या किया, शेक किया, थोड़ा शेक किया तो वो मिट्टी नीचे गिर गई, फिर मिट्टी पर वो चढ़ गया, फिर मिट्टी डालते गए, जब भी मिट्टी डालते गए पीठ पर वो हिलना शुरू किया और मिट्टी गिरना, फिर वो चढ़ना शुरू किया, तो वो चढ़ते वो कुएं से बाहर आ गया। हाँ, तो इसीलिए मैं कहती हूं, जब भी को कहते हैं ना कुछ करते हैं ना या कुछ ऐसे सिचुएशन है, शेक इट ऑफ, शेक इट ऑफ एंड ओनली देन यू कैन गो अहेड। जब भी परिस्थितियां आती है उसको सामना करना सीखे हम। वो चूई में ये बन करके वहां रोके नहीं बैठ जाए या फिर डिप्रेशन में नहीं चल जाए, तो इसीलिए टफ बनना बहुत जरूरी है। किसी ने गाली दी कोई बात नहीं, हमें फिर गाली नहीं देना है, लेकिन चुप होकर के, लेकिन अंदर भी दुखी नहीं होना है, उसने ऐसा क्यों बोला, गाली तो नहीं दी, लेकिन एक फ्रेंड होने के नाते जो मुझे मैं इतना प्यार करती थी उस व्यक्ति से, इतना मदद करती थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा बोल दिया तो सोच सोच करके मैं मायूस हो रही हूँ, दुखी हो रही हूँ, इससे काम नहीं बनेगा। बिकम टफ, जो भी हो यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड मूव अहेड। एंड दूसरी बात है, लिसन टू योर इंट्यूशन। क्योंकि टफ हम कब नहीं बन पाते हैं, लोगों की बातें हम जब सुनना शुरू करते हैं। दूसरी कहानी भी डोंकी की है, वो एक पोता और ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन दोनों जा रहे थे डोंकी के साथ, तीनों चल रहे थे। पासर्स बाय जो है तो उन लोगों ने कहा है कि इनको अकल ही नहीं है, गधे को ऐसे ही ले जा, केक तो बैठ जाता उसके ऊपर, तो ठीक है अपने दादा को बिठा दिया और चल पड़े। और आगे चल करके फिर लोग कहने लगे, देखो ये दादा को बिल्कुल अकल नहीं, अपने पोते को चला रहा है, खुद आराम से बैठ गया, तो ठीक है उतर करके पोते को बिठा दी, फिर चलना शुरू किया। आगे चल करके फिर लोग बोलने लगे, इस बच्चे को तो अकल ही नहीं है, दादा इतना बूढ़ा है तो उसको चला के जा रहा है। नहीं, वो भी फिर अभी करे क्या, ये बैठे तो भी बोले, ये बैठे तो भी बोले, दोनों बैठ गए तो दोनों बैठ गए। फिर आगे जब फिर बोलने, गधे पर तो कुछ भी रहम नहीं है, दोनों देखो दोनों बैठ गए उसके ऊपर, बिल्कुल रहम नहीं है। तो सोचा कि चलो अभी ऐसे करते हैं, गधे को उठा करके चलते हैं। तो माना समाज में लोग कुछ भी करे तो बोलने वाले हैं, आप मदद करें तो भी बोलने वाले, मदद नहीं करें तो भी बोलने में बोलेंगे, तो भी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो भी बोलेंगे। तो इसीलिए लोगों की बात पर नहीं आना है, उसके अनुसार हमें अपने आप को बदलना नहीं है। मुझे जो राइट लगता है वो करते जाना है, और मुझे जो राइट लगता है वो राइट बात है या नहीं है कैसे पता चलेगा? मुझे जो राइट लग रहा है आपको राइट नहीं लग रहा है, राइट? तो ऐसे कई बातें हो जाती है जो मुझे राइट लग रहा है तो, लेकिन वो एथिकली या फिर सोशली राइट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लिसन टू योर इंट्यूशन, जो अंतर आत्मा की आवाज को सुनने की जब हम आदत डालते हैं, अंतर आत्मा कभी भी गलत नहीं बोलता। तो ट्राई टू लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अंतर आत्मा की आवाज को सुनने के लिए क्या करना होगा, हमें साइलेंस की शक्ति को बढ़ानी पड़ेगी। जितना मन को शांत रखते हैं अंतर आत्मा की आवाज को हम सुन पाते हैं, तो इसीलिए बहुत जरूरी है। और छठी बात है, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ। ओनली व्हेन इट इज डार्क इनफ यू कैन सी द स्टार्स, है ना? परिस्थितियां ऐसी है, जब तब हम अच्छा कर्म करते तो वो दिखाई देने लगता है। देखा, इस परिस्थिति में भी उसने हिम्मत दिखाई, इस परिस्थिति में भी उस बहुत निर्माण रहा। तो नेगेटिव परिस्थितियों में जब अपना गुण दिखाते हैं तब वो लोगों को दिखाई देता है। वो अच्छे से प्यार से मेरे से बोल रहे हैं तो मैं भी दो चार शब्द अच्छे बोलूं, वहां कोई मैंने दिखाई नहीं देता है कि मेरी अच्छाई। जहां कुछ परिस्थितियां नेगेटिव है वहां मैं पॉजिटिव कुछ करती हूं तो वो दिखाई देने लगता है। तो इसलिए ऑलवेज हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो बहुत बहुत अच्छा होगा। ओनली नेगेटिव सिचुएशन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट पॉजिटिव क्वालिटीज। ये बहुत सुंदर एक क्लिप है। लेट मी हेल्प यू, ही सेज। अपना फूड उसको दे दी और बच्चे के सामने लिखा फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए वो पैसा दे रहा है वो बच्चे के लिए।
खाओ चढ़ाया राय।
What does he get?
खाओ थाम बैठनी ठुकवान।
क्या मिलता है उसको हर रोज इन लोगों को मदद करने के लिए, मदद करने से? Gets nothing.
ไม่ ได้รวยขึ้น
He won't be richer.
ไม่ ได้ออกทีวี
Won't appear on TV.
ไม่มีใครรู้จัก
Still anonymous.
ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
And he doesn't become famous. To go to school.
เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค
่ What does he receive?
ความรู้สึก
What do we receive? Our emotions and feelings.
ได้เห็นความสุข
He witnesses happiness.
ได้เข้าใจ
Reaches a deeper understanding.
ได้ความรัก
feels the love
ได้ใน
receives,
สิ่งที่เงินซื้อไม่ได
้ receives what money can't buy
ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม
the world becomes more beautiful
ในชีวิตคุณ
and in your life
อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด
ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี
तो हर हाल में जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो दूसरों की ब्लेसिंग्स जब हम देते दूसरों की ब्लेसिंग्स हम लेते जाते हैं अच्छे कर्म करके बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं आगे नहीं बढ़ रहे स्टक हो गया ओके नेक्स्ट इज डू नॉट स्लीप ऑन द बेड ऑफ सक्सेस थोड़ा बहुत हमने सक्सेस पा लिया थोड़ा बहुत हमने इज्जत पा ली थोड़ा सा जो चाहते थे वो हमको मिल गया फिर उसके बाद लेजी हो जाते हैं राइट थोड़ा बहुत फ्री मतलब लाइट हो जाते हैं
कभी भी ये नहीं करना है, क्योंकि स्ट्राइव फॉर द नेक्स्ट एक्सलेंस, योर ओपोनेंट इज ट्राइंग हार्ड एंड दे आर इक्वली स्ट्रांग. आराम हराम है. आराम करने से चूहे को मिली हल्दी की घाट और सोचा परसारी हो गया मैं. डोंट लिमिट योर सेल्फ, ब्रेक द बैरियर्स ऑफ लिमिटनेस एंड रीच द अनलिमिटेडनेस. जो हमेशा आगे बढ़ने का हमें सोचना है. ईगो ऑफ रावण एंड कंस ओवरलुक द पावर ऑफ अपोजिट फोर्स. सो बी हम्बल एंड ईगोलेस एंड स्ट्राइव हार्ड फॉर द नेक्स्ट विथ करेज. सो नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत बड़ा बैरियर जो हमारे लाइफ में आता है वो है ईगो. ईगो का बहुत बड़ा वॉल. भले हम बहुत सारे बैरियर से निकल आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ईगो का बैरियर रह जाता है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है ईगो का बैरियर. तो उसको तोड़ना बहुत जरूरी है. बड़े बड़े महारथि, बड़े बड़े महर्षि लोग ईगो के कारण से गिर पड़े. और रावण को ही की बात ही देखिए, वो बहुत विद्वान था, बहुत पंडित था, संपत्ति भी अथाह था, लेकिन ईगो, मैं भगवान से भी ऊंचा बन सकता हूं, वो ईगो के कारण से फिर उसका पतन हो गया. तो वो ईगो को तोड़ने की जरूरत है. ईगो को तोड़ने का तरीका क्या है, बहुत सारी विधियां हैं. आई जस्ट गिव वन और टू टिप्स फॉर ईगो. ईगो में आई और आई दो आईज है. तो ये जो आई है बड़ा आई, देह अभिमान वाला आई है. जो छोटा आई है उसके ऊपर एक बिंदी है. माना दिस इज स्वमान. अभिमान और स्वमान में ये अंतर है. अभिमान में बहुत ही अहंकार, वो बहुत जल्दी इंसल्ट फील हो जाता है. अभिमान में अभी अभी मुझे मान चाहिए, अभी अभी मुझे रेस्पेक्ट चाहिए, अखड़ा हुआ होता है वो ईगो वाला. लेकिन अगर अपने अंदर अभिमान नहीं है, स्वमान है. स्वमान माना आत्मा के मान में टिके रहना. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, उस परमात्मा के संतान हूँ. देह अभिमान माना मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी, बहुत सुंदर हूँ, मैं ये, मेरे अंदर ये स्किल्स है, मैं कंप्यूटर बहुत अच्छा चला सकती हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा कर सकती हूँ. जो फिजिकल स्किल्स है, फिजिकल ब्यूटी है, फिजिकल चीजें हैं, मेरे पास बहुत धन है, मेरा पोजीशन ये है, जो फिजिकल के साथ कनेक्टेड है वो देता है अभिमान. और स्वमान माना आत्मा के मान में टिके रहना, वो है स्वमान. अभिमान से हमेशा दुख मिलता है और स्वमान से शक्ति मिलती है. अंदर आत्मा को शक्ति मिलती है, कोई भी चैलेंजेस आए हम उसको फेस कर सकते हैं. तो आत्मा अभिमान, अभिमानी होकर के जब हम कर्म करते हैं, आत्मा के अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती है. तो आई जो वॉल, आई का वॉल हो जाता है, तो वो सेपरेशन हो जाता है, वही ब्रिज बन जाता है आई कॉन्शियसनेस फिर वी कॉन्शियसनेस. जब भी कुछ होता है, जो भी क्रेडिट देना है दूसरों को दे क्रेडिट देना. कभी भी कुछ गलत काम हो गया, अगर टीम वर्क कर रहे हैं कुछ गलत हो गया, हम क्या करते हैं, इसके कारण से हुआ, मेरे कारण से नहीं, वी वांट टू कीप आवरसेल्फ सेफ. लेकिन द साइन ऑफ अ गुड लीडर इज टेक द ब्लेम ऑन योरसेल्फ एंड गिव द क्रेडिट टू अदर्स. क्रेडिट दूसरों को देते चले, तब जाकर के हम अपने ईगो को ब्रेक कर सकते हैं. समय कम है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा स्किप कर लेती हूँ. और सेवेंथ बात है, डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. वो ईगो कम कैसा होगा, डेवलप द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा ग्रेटफुलनेस, धन्यवाद, शुक्रिया की भावना. क्योंकि चाहे वो माता पिता है या फिर फ्रेंड्स है, जो जिन्होंने भी मदद किया, एक शॉप वेंडर भी है या कोई भी है, हर एक के प्रति हमारे अंदर ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, हर एक के प्रति. और परमात्मा के प्रति तो ग्रेटफुलनेस है ही, उसके तो शुक्रिया मानते ही है, लेकिन क्या लोगों को हम शुक्रिया करते हैं,
हाँ लोगों को शुक्रिया कर देते, उसको नजरअंदाज कर लेते हैं, नजरअंदाज कर लेते हैं। एक बच्चे अपने माँ के पास आकर के कहा, मम्मी मैं सुबह से बहुत काम किया, मैंने लॉन्ड्री किया, बाहर गार्डन में जाकर के पानी दिया, तो गार्डन में जाकर के पानी दिया 5 रुपीज, मैंने लॉन्ड्री किया 10 रुपीज, मैंने हाउस क्लीनिंग किया उसके लिए 5 रुपीज। उसका इतना लंबा छोड़ा बिल बना करके मम्मी के पास ले आकर के दिया, मतलब ये सब कुछ होकर के तो 200 रुपीज मेरा अमाउंट है, बिल है, तो 200 रुपीज मुझे दो। तो मम्मी ने बहुत प्यार से उस बच्चे के पे देखा, तो फिर लिखा उसके बिल के पीछे, मैंने तुमको 9 महीने गर्भ में रखा, नो चार्जेस। तुमको फिर बाद में फीडिंग की, उस तुम्हारी देखभाल की, जब भी तुम बीमार पड़ा मैं जाग करके फिर तुम्हारी देखभाल की, नो चार्जेस। तुमको स्कूल भेजने के लंच बनाती हूँ, डिनर बनाती हूँ, नो चार्जेस। तुम्हारे सब कुछ काम करती हूँ फिर भी नो चार्जेस। फिर इसीलिए पूरा कैंसिल हो गया तुम्हारा और मेरा, फिर इक्वल हो गया। तो ऐसी बात है, जो बहुत सारे लोग हैं, ना केवल पेरेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, क्या उनके प्रति हमारा शुक्रिया निकलता है? दिल से हमारा शुक्रिया निकलता है। तो हमेशा जब हम शुक्रिया मानते चलते हैं तो वी अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी। अगर हमेशा ब्लेम करते जाते हैं या हमेशा हम किच-किच करते रहते हैं तो वी अट्रैक्ट नेगेटिव एनर्जी। शुक्रिया मानते चलते हैं वी अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी, और भी हमको मदद मिलता जाता है और भी हम आगे बढ़ते जाते हैं। और लास्ट है, मेक गॉड एज योर कंपेनियन, मेक गॉड एज योर कंपेनियन। जैसे आज हमने देखा एक एक्टिविटीज से, अभी मैं ये चाहती हूँ आप एक लेटर लिखिए। मैं आपको 5 मिनट देती हूँ अभी, एक्चुअली 15 मिनट देने का सोचा था, टाइम ज्यादा नहीं है, 5 मिनट्स आपको देती हूँ। आप अपना नोटबुक खोलिए, पेन निकालिए और यू जस्ट राइट वॉट एवर, भगवान के लिए एक लेटर, सुंदर लेटर लिखिए 5 मिनट्स में, थैंक्स करते हुए, किन किन चीजों के लिए थैंक्स, किन किन चीजों के लिए थैंक्स है वो आप लिखते जाइए 5 मिनट्स में। बिकॉज भगवान एक ही है जो अनकंडीशनल लव दे सकता है, निस्वार्थ प्रेम वही दे सकता है। आज हमारी मुरली होती है ना, हर सुबह जो हम मुरली सुनते हैं, बीके भाई बहने, आज सुबह की मुरली में भी यही था, भगवान एक ही है जो निस्वार्थ प्रेम हर आत्मा के साथ करता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं हमारे से। इसीलिए बच्चों से भी यही उम्मीद है कि आप भी भगवान को जब याद करते हो निस्वार्थ भावना से याद करो, क्योंकि भगवान को कब हम याद करते, जब परेशानियां बढ़ जाती है तब भगवान को बार बार सलाम करते, आरती करते, ये करते, वो करते, लेकिन जब सुख के दिन है हम भूल ही जाते, टाइम नहीं है मेरे पास। जब दुख आ गया तो टाइम कहाँ आ गया भगवान के पास आने के लिए, हा? तो इसीलिए अनकंडीशनली हमें उनके साथ संबंध जोड़ने की जरूरत है। तो राइट अ लेटर टू गॉड, जो भी दिल के उद्घार है आप लिख सकते हैं भगवान, और यू विल फील वेरी गुड अगर आप लिखते हैं तो। आपको देखना आपके आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ जाता है। और एक बात है, जब भी आप लिखते हैं ना दोबारा उसको नहीं पढ़ना, जो भी एक बार दिल पे उद्गार है लिख दिया, लिख दिया, फिर दोबारा नहीं पढ़ना उसको, ठीक है? दिल के उद्गार निकल गए हैं, यू फील वेरी लाइट विद देम, बहुत हल्का लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
हमारे ब्रह्म कुमारीज में एक व्यक्ति ऐसा था, मतलब ऐसा है, जो दिल्ली में रहते हैं, वो रोज लिखते हैं। एक बार उन्होंने, वो अमेरिका जाना हुआ उनको कुछ काम से, तो रोज जो लिखते थे, एक बार वेदर खराब हो गया और उनको दिल्ली वापस आना बहुत जरूरी था, बहुत अर्जेंट मीटिंग थी। 3 दिन वेदर खराब होने के कारण से वो फ्लाइट्स नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो बाबा, बाबा क्योंकि भगवान को हम बाबा कहते हैं, राइट, तो बाबा को मैं लेटर लिख लेता हूँ। रोज आदत है, छोटी छोटी बातें वो लेटर में लिखते हैं। उस दिन भी उन्होंने लेटर में लिख दिया रात को कि बाबा मुझे अर्जेंट जाना है, आपको पता है ना क्या अर्जेंसी है, तो ये सब कुछ लिख कर मुझे जाना ही है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ कल सुबह, मुझे फ्लाइट चाहिए। इस विश्वास के साथ, अथॉरिटी के साथ लेटर लिखा, लिख करके बाबा के कमरे में रख करके वो निकल पड़े अगले दिन सुबह। सभी जो सेंटर के भाई बहनों से विदाई ली, और सेंटर की भाई बहनें सोचे कि वापस ना आ जाए, फिर मतलब एयरपोर्ट जा करके फिर वापस आ जाएंगे तो फिर आना जाना होगा, लेकिन फिर उनको इतना विश्वास था, पूरा लगेज के साथ, रास्ते के भोजन जो भी लेना होता है वो सब कुछ लिया, जो प्रसाद लेना था सब कुछ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ सब कुछ पैकिंग करके, सब कुछ लेकर के फिर वो निकले। निकलने के बाद फिर एयरपोर्ट में गए और उस दिन वो एक ही फ्लाइट निकली उस एयरपोर्ट से और उनको जाना हुआ। तो मैं इतना ही विश्वास, खुद में तो विश्वास है ही, लेकिन भगवान के ऊपर इतना विश्वास रख करके अथॉरिटी के साथ उनको लिखा कि आपको पता है ना मुझे क्यों जाना है, क्या एजेंसी है, तो मुझे एक फ्लाइट चाहिए ही चाहिए। तो माना ऐसे अथॉरिटी के साथ, पर अथॉरिटी हम डेवलप करते हैं भगवान के साथ, वो बंधा हुआ है हमको मदद करने के लिए, वो बंधा हुआ है, ऐसे संबंध हमें निभाना है। कल सुबह का जो सत्र है आपका, 7 o'clock का सेशन, वो कैसे भगवान के साथ हम संबंध जोड़े वो उसी के बारे में है। आज सुबह का जो सेशन परमात्मा के ऊपर था, कल सुबह वो सेशन है, जरूर अटेंड करिए और फिर उसकी गहराई में आप जा सकते हैं, कैसे हम उनके साथ संबंध रखें और कैसे उनको याद रख करें, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओके, अभी सेशन पूरा करते हैं। अब अल्टीमेटली स्माइल इज अ कर्व दैट सेट्स मेनी थिंग्स राइट, सो कीप स्माइलिंग। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आए तो स्माइल तो करना है, लेकिन अंदर से भी विश्वास रखना है वो मेरे साथ है, भगवान मेरा साथी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सत्र सेशन पूरा करती हूँ। अगर आपने अपना लेटर लिखना पूरा नहीं किया है, भले पूरा करके रात को सोने से पहले, बाबा का कमरा है यहाँ राउंड, जो हार्मनी हॉल के उस तरफ एक राउंड कमरा है, बाबा का कमरा हम कहते हैं, वहां एक बॉक्स है लेटर्स डालने के लिए, हाँ उस बॉक्स में जरूर डाल करके आप सोने से पहले, ठीक है, उसको पूरा करना लिख करके, देन यू विल फील वेरी लाइट, अच्छी नींद आएगी रात को। और बीच बीच में ये आदत बना के रखना, रोज भले आप लिख नहीं पाते हैं लेकिन बीच बीच में प्रॉब्लम्स है या नहीं है, जो भी है बातें खुल करके भगवान के साथ आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओम शांति।
नेम भी लिखना है या
लेटर? नेम भी लिख सकते हैं क्योंकि वो लेटर कोई और नहीं पढ़ता है, उसकी सेफ्टी है, कोई नहीं पढ़ता है वो लेटर, तो इसलिए नेम भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि आप लिखने से पहले जब आप सोचते हैं ना, वही वो सोच भी वहां तक पहुंच जाता है, तो इसीलिए नाम लिखे ना लिखे इट्स नॉट रिलेवेंट। ओके,
बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय सुमन दीदी का, बहुत सुंदर हमें 10 टिप्स दिए अपने लाइफ में आए हुए बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए, और बहुत सुंदर बताया कि सबसे बड़ा बैरियर है लोक लाज। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग जाने क्या कहेंगे लोग, तो इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे वो देखना है, लोग जो कहेंगे, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है आगे बढ़ना।
और साथ साथ बहुत सुंदर बताया कि हमें सबको फॉरगिव करना है, क्षमा करना है। कहते हैं कि शक्तिशाली लोग क्षमा करते हैं और कायर लोग बदला लेते हैं। तो चेक करना है कि हम शक्तिशाली हैं या कायर हैं, क्या है, क्या है, सोच के बोलिएगा, शक्तिशाली हैं कि कायर हैं? कायर से शक्तिशाली बनना है। वेरी गुड, गिव अ बिग हैंड। साथ साथ बाबा ने बहुत सुंदर बात कही एक मुरली में, मीठे बच्चे तुम सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो तो मैं तुम्हारे जागने से पहले तुमको माफ कर दूंगा। तो इसलिए अगर माफी चाहिए तो माफ करना बड़ा जरूरी है। तो दिल से मैं आप सब की तरफ से थैंक्स करना चाहूंगी सुमन दीदी को, जो लास्ट में हमें बताया कि शिकवे छोड़ प्रभु शुक्रिया करना है, सबका शुक्रिया करना है। आपने पूरे सेशन को बहुत लर्निंग एंटरटेनिंग बनाया, एक्टिविटीज के साथ, वीडियोस के साथ बहुत सुंदर रीति से हमें स्पष्ट किया। दिल की गहराइयों से आपका एक बार फिर से थैंक्स।